سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعا یا اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. جی آج امین صاحب کے ساتھ میرا سفر جاری و ساری ہے. آپ نے ہمارے سفر کا پہلا حصہ پریویس جو لاسٹ ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں ملاحظہ کیا ہوگا, ہم نے نماز عصر تک کا منظر آپ کو دکھایا تھا. اس وقت ہم آفس میں ہیں, یہاں پر اکاؤنٹس اور دیگر انتظامی امور جو ہے وہ سر انجام دیے جاتے ہیں. یہاں کچھ دیر بیٹھیں گے, چائے کا بھی وقت ہے, تھوڑی ہائی ٹی بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سید مشرف شاہ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں اور یہ علاقہ ہے, ذمہ داری بھی ہے, تھوڑا بات چیت بھی کریں گے.
ہمارا جو ایک دینی ماحول ہے تو اس میں مدینے جانے کا بھی ایک شوق دلایا جاتا ہے. اچھا بندہ تڑپ رہا ہے حاضری کے لیے, اچانک خوشخبری مل گئی کہ مدینے کا بلاوا آ گیا, اب وہ مدینے جانے کی تیاری. پھر وہاں اگر جا رہے تو اس کے آداب, وہاں جو وقت گزار رہا ہے اس کا طریقہ. اچھا اب جب واپسی ہو گئی ہے, اس واپسی کے بعد بھی وہ سفر یاد رہے, اس کی تازگی ملتی رہے, وہ جو چیزیں ہیں نا الحمدللہ, یہ بھی ہماری ایک ماحول کی ایک برکت. صاحب مجھے یاد ہے جب 95 میں ہم نے امیر رسول کے ساتھ سفر کیا تھا تو دوران سفر بھی آپ نے کلام لکھے. جو واپسی ہوئی نا تو ایک کلام لکھا تھا, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, یہ کلام لکھا تھا اس ٹائم. اچھا اس کلام کو جب پڑھا تو چونکہ اب سفر ہوا تھا ساتھ, تو وہ جو چیزیں دیکھی تھی نا سفر میں, وہ ساری وہ اشعار میں تشریح دی اس کی. جیسے فرمایا کہ وہ وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ, درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ, کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا. اچھا جب منظر کشی وہاں واقعی دیکھا کہ امیر حسین ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں, اچھا درود ان پہ پڑھتے کبھی راستہ سارا, تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی درود شریف پڑھ لیں, کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر. تو جدہ کا ایک سفر تھا ہمارا, تو وہ سفر بھی تھا سارا راستہ نعت خوانی ہوتی رہی ہو. مطلب ایک ذوق شوق برقرار رہے. اللہ پاک بار بار نصیب فرمائے, سفر حج قبول کرے. اور بڑی پیاری تربیت ہے کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو اب ماشاءاللہ حج سے آ گئے ہیں, تو ظاہر دینی کام تو ویسے ہی کرتے تھے, نیکیاں کرتے ہی تھے. قاسم بھائی انشاءاللہ.
ناظرین اب ہم روانہ ہو گئے ہیں, واپسی کا سفر ہے اور فیضان مدینہ کی جانب یہ سفر ہے. انشاءاللہ مزید کچھ جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی. آج صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنے فیملی میں ماحول میں آنے والے سب سے پہلے, یا آپ سے پہلے بھی کوئی ماحول میں تھا؟
نہیں میں ہمارے فیملی میں پہلا ہی تھا.
اچھا ماشاءاللہ. ایک دینی ماحول سے وابستہ شخص کا کسی فیملی میں بڑا ہونا یا انفلوئنسر ہونا, یہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے اور اس کی وجہ سے فیملی میں دینی کاموں کے اعتبار سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟
کسی نے اس طرف توجہ دلائی تھی تو ایسے میں نے غور کیا, تو الحمدللہ ہوا یہ کہ اس پر جب غور کیا تو مجھے ایک چیز یہ کنفرم ہی ہوئی کہ جتنے بھی ہمارے مرد ہیں نا سب کی داڑھی آئی.
اللہ اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے.
تو مرد داڑیاں ہیں, اور جیسے حفاظ کا میں نے عرض کیا تھا نا, اسی طرح علماء میں بھی ہے کہ ان تقریباً نو عالم اور عالمائیں.
اچھا
یہ ہمارے فیملی میں.
یہ تو بہت اچھوتی بات ہو گئی نا کہ بزنس بیک گراؤنڈ والی فیملی میں علماء عموماً کم ہوتے ہیں,
اور پھر میمن
اور
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ
اس طرف کم, لیکن ماشاء اللہ نو علماء تو کسی تقریب میں جمع ہوتے ہوں گے
ہمارے گھر میں.
اور دینی ماحول سے وابستہ
میرے چھ بچے تو الحمدللہ تینوں بیٹیاں عالمہ ہیں
ماشاء اللہ,
دو بیٹے مدنی ہو چکے, और एक अभी बस वो चौथे साल में तो भी वही जाएंगे था चल
100 में से 100 नंबर
100 में
माशाल्लाह।
फिर दो बहुएं हैं तो दोनों आलिमा है।
अच्छा
मदनिया है वो भी।
वाह क्या बात।
तो ये अमीर अहले सुन्नत एक होता ना कि निस्बत की बरकत जो कही जाती है क्या रहा निस्बत की क्या बरकत है। मैंने कहा ये बरकत है भाई देख ले
जबरदस्त।
शुरू से ये जहन बना कर रखा कि एक तो ये कि अपने दीनी माहौल। अच्छा फिर जनाजा अगर मैं कभी गौर याद करता हूँ तो मैंने अपने बेटे का भी जनाजा पढ़ाया मैंने अपने वालिद साहब का भी जनाजा पढ़ाया। और ख़ानदान में अगर मैं कहीं पहुँच नहीं सका तो अलग बात है बल्कि तकरीबन जनाजे मैंने ही पढ़ाए नाना नानी मामू तो खाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि यूँ एक माहौल का एक असर तो मिल ही जाता।
क्या बात।
तो कई ऐसी चीज़ें जो रस्मी तौर पर राइज थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो समझे कि वो निकल ही गई रस्म यानी हमारे को चल मशहूर के भाई तो खानदानी रस्म है तो फलाना तो कोशिश की कि सब चीज़ों में। और फिर वही इल्म नूर है जो इसका फैज़ान यही नसीब हुआ कि जैसे जैसे मालूमात होती है।
अच्छा इसमें रस्म की जब बात करते हैं ना तो जो फौरी तौर पर जहन जाता है वो खुशी की रसूमात लेकिन गमी की रसूमात में भी बहुत सारी गड़बड़े हैं। जब इल्म हासिल होता है तो मैं एक जनाजे में शिरकत का मौका मिला कहीं पंजाब में। अच्छा हो सकता है नाजरीन के लिए नई बात ना हो लेकिन मेरे लिए नई बात थी। तो करीबी थे कोई तो वहाँ पर जनाजा हो गया तदफीन हो गई और उसके बाद घर पर आ गए और आकर जो है वो अब बैठे हुए जैसे बैठे होते हैं तो गैराज के अंदर तो एक शख्स बैठे थे तो उसने कोई नज़म पढ़ना शुरू की ना जिसमें मस्जिद के बारे में और साफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो। तो मैंने कहा भाई ये क्या है और क्यों है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ का कल्चर है इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की नज़में जो है वो याद होती हैं उनको और बड़ी गमसदा तर्ज में ना उसको पढ़ रहा है तो जो अब घर वाले हैं वो इसको सुनते रहेंगे कई दिनों तक और फिर रोना धोना और ये चीज़ें रहेंगी। तो अब ये एक अजीब सी बात थी। तो बहरहाल इस तरह मौत मैयत पर तदफीन पर तो रसूम जो है वो दोनों तरफ होती हैं और माशाल्लाह दीनी माहौल की बरकत से जहाँ अपना कोई मुबल्ली होगा तो वो तो फिर अपनी चीज़ें करेगा माशाल्लाह।
फिर कोशिश ये हो ना कि मदनी मुज़ाकरा देखें और दिखाएं फैमिली में इसके बहुत प्लस मिलते हैं। अभी जैसे वो एक बड़ी मशहूर कलाम है माँ के फजाइल पर एक कलाम पढ़ा जाता है तो माँ की याद में एक कलाम पढ़ा जाता है तो देखा यही जाता है कि अब जब भी माँ की बरसी होगी तो किसी को बुलाया जाएगा कि यार वो कलाम सुनाओ। अच्छा मैंने जब सुना फर्स्ट टाइम तो मुझे तो अच्छे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा लगा मैं तो उसके फ़ौरन अशार ढूँढे लिखे और जब एक दफ़ा पढ़ा भी और वाकई बड़ी उस पर दिक्कत और बड़ा सोच। तो इतफाक से मदनी मुजाकरे में हमने कोई मौजू चला तो उस पर पढ़वाया। अब अमीर रसूलुल्लाह ने जैसे इसको सुना तो फौरन आप अच्छा बात आपके आपके सामने कोई बात हो जाए ना तो फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि कुछ हुआ बेचैनी हो गई है ना। अब बेचैनी हो गए और फिर मुफ्ती साहब से मशवरा होना शुरू हुआ तो पता चला कि नहीं भाई ये तो नहीं सुन सकते। जहाँ मेहरान के भाई क्यों नहीं सुन सकते तो ये ना वो हुज़्न पैदा होता है तजदीद हुज़्न सो इस वजह से इसको जो है ना वो ना सुना जाए कि भाई ये जायज़ नहीं रहेगा। तो चूंकि वो एकदम से याद ऊद करती है बात है बेसास्ता चाहे वो तो सही बात है कि वही बात है कि अच्छे माहौल की बरकत होगी तो फ़ायदा होगा। तो इसके ओवरऑल जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी जो बातें की थी ना कि यार ये जो फैमिली की मोहब्बत है प्यार और ये जो ताल्लुक कायम रखना करना ये सब है ही इसके पीछे बेस ही यही है कि आप अगर अपने घर में अपने ख़ानदान में अपने माहौल को क्रिएट कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में दर्स होता है हमारे घर में इज्तिमा होता है। अच्छा अब चूँकि घर में यूँ बज़ाहिर बच्चियाँ चली गई हैं लेकिन घर में हमारा बच्चियों का मदरसा हो गली गली मदरसों मदीना तो यूँ घर वाले भी माशाल्लाह इसमें एक मसरूफियत नेकी का काम तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका एक
बड़ी नेमत
बड़ी नेमत
और जिन घरों में ये नहीं होता अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, बास तो वो हैं कि जिन्हें, जिसको कहते हैं ना लज्जत आशनाई ही नहीं है, पता ही नहीं कि भाई इसकी क्या बरकतें हैं, लेकिन एक तादाद ये भी देखिए कि जो ये तमन्ना रखती है कि यार हमारे घर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता, लेकिन जितना हम कोशिश कर सकें उतना हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और अब तो जैसे ये प्रोग्राम भी मदी चैनल के ज़रिए लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ देख रहे हैं। एक किसी ने बात कही बड़ी अच्छी थी कि अगर आपको रोज़ाना घर में मुफ्ती साहब की बरकतें चाहिए, एक बेहतरीन कुरान पढ़ाने वाला चाहिए, इल्म हदीस बयान करने वाला चाहिए, इसी तरह आपको जो शरी मसाइल बताने वाला चाहिए, रोज़ाना आपके घर पर जो है ना जो भी मदनी चैनल की कैटेगरीज हैं, तो आप सोचें कि आपको कितना अहतमाम करना पड़ेगा अगर फिज़िकल किसी को करना पड़े। लेकिन मदनी चैनल ये तमाम चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी जो है वो बरकतें हमें हासिल करनी चाहिए। ऐसा आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ हासिल की, कितनी हासिल की?
मैंने ग्रेजुएशन किए।
अच्छा, दीनी माहौल में आने से पहले या उन्हीं दिनों में या क्या, यानी माहौल में आने का क्या?
ये भी बड़ा क्या वाकया हुआ कि मैं मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर और पार्ट वन में जब मैं था तो मैं माहौल में आया था।
अच्छा,
आना जाना शुरू हुआ था।
सही।
और पार्ट टू में जब मैं पहुंचा था तो मैं माहौल में आ चुका था, यानी मेरा वक्त गुजर रहा था माहौल।
सही।
तो यूं मतलब वो पूरा सफ़र जो था ना एजुकेशन का, उसमें ये दोनों स्टेप रहे। अब चूंकि एक शुरू से तबीयत एक तरह से देखा जाए ना लीडरशिप की ही रही है, यानी अगर मैं मैट्रिक किया मैंने तो जो मुझे याद है 10 साल में से पहली क्लास का यूँ थोड़ा थोड़ा याद तो है, लेकिन उस टाइम कोई ऐसा कल्चर नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्लास से मैं मॉनिटर रहा हूँ। सर यूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो दिन गुजारे तो वो इसी में गुजारे, मॉनिटरी में। अमीन मेरा नाम, अमीन मॉनिटर के नाम से मशहूर था रखा गया, यानी इस टाइम में पहचान यही थी।
सही सही।
तो यूँ मतलब मैट्रिक भी किया, जब फर्स्ट ईयर में आए तो मैं उस टाइम कराची आया था, यानी 85 में मैंने मैट्रिक किया था।
सही।
फिर मैं यहाँ जिस कॉलेज में दाखिला लिया तो ज़ाहिर वो माहौल में हम खुद भी नहीं थे, तो नहीं शऊर भी नहीं था, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जो हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, कराची का माहौल थोड़ा एडवांस था, और थोड़ा तनसीमों का इन्फ्लुएंस और फिर वो जो एक फैशन का और ये सब, तो उसमें ज़ाहिर है फिर हम भी बह गए। लेकिन फिर बहरहाल अल्लाह पाक ने करम किया और हमारे इस टाइम में की कोशिशें हुई, दावत देते रहते थे तो यूँ इज्तिमा में पहुँचे। फिर अमीर रसूलन का जब कुर्ब आया और उनकी जो मोहब्बतें हैं शफकतें मिली तो सारी।
जी नाज़रीन, ये बारिश है, ये देखें, ये एक आपको इत्तेफाकन ये शॉपर चढ़ाया हुआ है या पहना हुआ है, जो भी कहें, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो अब बेचारे के पास रेनकोट नहीं होगा, निकले होंगे ऑफिस या कहीं पर, तो अब घर तो पहुँचना है। इस टाइम जो है वो मगरिब के करीब का वक्त है और ऑफिस से छुट्टी का वक्त है, तो यहाँ पर लोगों को एहतमाम करते हुए देखा है, मोबाइल कैसे महफूज करना है, अपने आप को कैसे करना है, तो लगे हाथों तो मैंने कहा चलें एक मंजर नज़र आया इसको भी कैप्चर करते हैं।
जी सर, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि वो जो माहौल था ना, तो उसमें कंपेरिजन जब किया जाता है, तो मुझे जब अचानक वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं तारे एकदम से शॉक हो गए कि क्योंकि फैमिली मेरी हैदराबाद से यहाँ बिल्कुल नई नई आई थी, और यूँ
बताया जो कि आप
मेरी एज अप्रोक्स 20 के आसपास, बल्कि नहीं 22 एज थी मेरी, तक 22 एज, 91 की बात है। तो उसमें जब वालिद साहब का ये इंतकाल हुआ ना, तो मैंने कहा कंपैरिजन तो इस्लाम भाई आ गए फ़ौरन, वालिद साहब को गुसल देना है, घर में इंतज़ाम हो गया। अच्छा, चूँकि माहौल दीनी माहौल में आकर ना ये गुसले मैयत का काम सीखा था, अब जब दिया ना तो एहसास हुआ यार हम तो गुसल करना नहीं आता था, आज वाले सब वो गुसल दे रहे, और चूँकि औलाद पर ये हक भी है कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा गुसल दे। अच्छा, जब जनाजा हुआ तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत मिलती थी दाउद इस्लामी में, तो बड़ी तादाद में इस्लामी में मौजूद थे, और हमारा एक मेन रोड है, काफ़ी तादाद थी, जोर में वर्किंग डे था, हालांकि मैं काफ़ी तादाद में इस्लाम भाई और एले मोहल्ला और सब जमा हो गए, रिश्तेदार भी थे। अब जब जनाजा तैयार हुआ ना सद भाई, हमारे इमाम साहब थे गुलाम हसन साहब, तो उन्होंने मुझे हाथ कंधे पे हाथ रखा करके हाथ जनाजा पढ़ा दी। आप यकीन माने मैं वो मंजर भूलता नहीं हूँ कि मैं जनाजे पे खड़ा था ना, सोचने लगा यार देखो यार हमें तो पढ़ना नहीं आता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वे जनाजा पढ़ाए बिल्कुल ऐसे। तो ये एक ना जैसे कंपेरिजन करता है इंसान, सोचता है कि मिलेगा क्या, ये मिलेगा, ये जो हुकूक अदा करने होंगे या कोई सा मामला होगा जो यूं बाजार देखा जाए तो इसको सीरियस ही नहीं लिया जाता
है जी। और लोग इसको समझते नहीं है कि ये भी कोई करने का काम है और हमारा करने का काम है, और बस इमाम साहब कर लेंगे फलां कर लेगा। और दीनी माहौल की बरकतों में माशाल्लाह मैं एक ऐसे जनाजे में शरीक हुआ, ये होगी कोई 2000 के आसपास की बात होगी, नौजवान का इंतकाल था। हालांकि जवान जो जनाजा होता है तो उसमें वैसी लोगों की रगबत ज़्यादा होती है, गुलिस्तान जोहर के इलाके की बात, उस वक्त हम जामतुल मदीना में पढ़ते थे, तो बैठे हुए थे दर्जे में, तो कोई आए नाजिम साहब या दर्जा जिम्मेदार के कुछ लोग आए हैं, तो वो इंतकाल हो गया तो जनाजे के लिए जाना है, तो उमूमन मदारिस की तरफ लोग रुजू करते हैं। तो वो चूँकि दीनी कामों के अतबार से हमारा हल्का था, तो मैं और मेरे साथ एक और इस्लामी भाई, तो हम लोग गए वहाँ पर। अच्छा घर पर पहुँचे तो सिर्फ घर वाले, दो तीन अफराद और जनाजा रखा हुआ है। अच्छा कोई हमसाया नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ दूर के होंगे या किसी और शहर के होंगे। बहरहाल हम उस वक्त इतनी एज भी नहीं थी और ये ऐसा वाकया पहली दफ़ा, बहरहाल हमने मदद करके जैसे तैसे, फ्लैट थे तो वो थर्ड फ्लोर था या फोर्थ था, नीचे उतरे। अच्छा अब जनाजे को कंधा देना है तो चार या पांच लोग थे, यानी ऐसा था कि शायद कंधा तब्दील करने वाला भी एक आधे मौका आया हो। बहरहाल हमने तो ज़ारे सवाब की नीयत से जनाजा भी पढ़ा और फिर तदफीन की, फिर वापस आ गए। आज तक उस वाक़े की ना, हालांकि 20-22-25 साल हो गए, वो एक छाप है कि यार ये क्या ऐसा भी है। अच्छा अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन अगर इसके आसपास हम गौर करें तो वही बात है कि ज़िंदगी में अंदाज ऐसा रखा होगा कि किसी के साथ बनी है नहीं बनी, किसी के आना है किसी के यहाँ जाना है, किसी के यहाँ खुशी गमी है, तो हमारा क्या किरदार होना चाहिए। तो कराची जैसे शहर में ये अचंभे की बात है, यानी कि ऐसा तो किसी छोटे शहर में भी नहीं होता अमूमन, लेकिन ऐसा हुआ। अब अल्लाह आलम, ज़ाहिर हम इतना उसको डीपली जान तो नहीं पाए थे कि उसके पीछे क्या वजूहत थी, लेकिन अगर ज़ाहिर एतबार से गौर किया जाए तो बज़ाहिर इस तरह की वजूहत हो सकती हैं। तो वही है कि ज़िंदगी में रहते हुए जब आपके ताल्लुकात, सिला रहमी, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, किसी के साथ आपका उठना बैठना, तो फिर जनाजों के वक्त और मुश्किल वक्त में आप लोग जो आपके साथ कैसे खड़े होते हैं। आपका तो एक बड़ा सफर गुजरा है, आपने देखा होगा
एक जुमला एंड करते हैं कि बाज़ूकात इसमें भी एक होता है, तो इतना ना इंसान कहीं लिखा पढ़ा था कि मैं बहुत अहम था ये मेरा वहम था
जी।
तो कई ऐसी चीज़ें जो है ना इस मौके पर इंसान को शायद एहसास दिलाती हैं, क्या मैं समझता था कि यार मेरे पीछे इतने इतने, वो बाद अवकात बस वो दौलत की चमक दमक होती है ना, इंसान की शोहरत होती है तो सब आगे पीछे कुबरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वही पहली एपिसोड वाली बात ऐड करेंगे कि अगर रिश्तेदार हों और ये जो ताल्लुक जो कायम होते हैं ना, ये वो जगहें होती हैं कि जहाँ पर वो भूलता नहीं है। बिल्कुल
एम्बुलेंस की आवाज़ है, दुआ करते हैं अल्लाह पाक खैर फरमाए,
आमीन।
या तो मरीज़ होगा या मरीज़ को लेने के लिए जा रही होगी, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, जो भी मरीज़ है उसके लिए शिफा अता फरमाए। कराची शहर में चूँकि आबादी काफ़ी है तो अमूमन जब भी बाहर निकलते हैं तो गाय बगाए इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती, तो दुआ करनी चाहिए। अमीर अल सुन्नत जो है उनके बारे में अमीर सुन्नत खुद ही बयान फरमाया था तहदीसी नेमत के लिए कि मैं जैसे जा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दुआ देता रहूँ, कोई मुश्किल में है, कोई ऐसी चीज़ को मंजर देखे। अब इसमें भी तो बदगुमानी शुरू हो जाती है ना, अब एम्बुलेंस ने सायरन दिया तो अब लोग कोई रास्ता बनाने के लिए कोशिश करें, भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता, होता होगा कहीं कभी किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन उमूमी मिजाज जो है वो ऐसा नहीं है, यानी कि हर दफ़ा ऐसा हो ज़रूरी नहीं कि जब भी किसी को मुश्किल में देखें या मुश्किल की सूरत हाल देखें तो उसको दुआ दे दें, अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए, और ये एक आजमाइश की घड़ी होती है। चाचा बात हो रही थी कि जो खानदान में भी और इसी तरह मोहल्लों में भी देखा है, बाल लोग होते हैं जब भी किसी पर कोई मुश्किल आएगी तो सबसे पहले खड़े हैं, यानी वो मशहूर होते हैं। फॉर एग्जांपल नाजरीन मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई मुश्किल हो जाए तो आपके जहन में एक नाम आएगा कि आप सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, ठीक है? तो वो क्यों आया कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने अपने आप को ऐसा मोहल्ले में रखा है कि मुश्किल वक्त में काम आता और लोग उससे रابطہ करते हैं। तो लेकिन जब वो किसी की खैरखाही करने के लिए अपने आप को वक्फ करता है तो जब कभी वो आजमाइश में आता है तो सारा मोहल्ला फिर उसके साथ खड़ा होता है। तो जो इस तरह से अफराद होते हैं जो दूसरों के काम आ रहे होते हैं तो फिर जब वो किसी आजमाइश में होते हैं तो फिर उनकी भी उसी तरह खैरखाही, भी सारा मोहल्ला सारा ख़ानदान उन्हीं के साथ खड़ा होता है। एक इस्लाम भाई का मुझे याद है, वो इसी टाइप का है, दीनी मॉल से वाबस्ता है, तो उसका बेचारे का खुद जो है वो एक्सीडेंट हो गया और 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर। मैं भी गया यादत के लिए, फ़ोन पे भी रहता था रबता, तो मैंने पूछा हाँ भाई बताओ अकेलापन तो नहीं महसूस हो रहा है? कह रहे हैं असद भाई अकेलापन क्या, मुझे फ़ोन आ जाता है कि मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ इकट्ठे नाश्ता करेंगे, सुबह उठता हूँ यार उनकी टांग का मसला था और कोई इशू था ही नहीं खाना पीना ये वो, बोला रोज़ाना कोई ना कोई नाश्ता लेकर आता है, हम बैठ के नाश्ता करते हैं वो आधा पौना घंटा, फिर दोपहर को कोई आता है उसके साथ, तो शाम तक मगरिब इशा तक मुझे तो कोई भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। और कहीं बेचारे ऐसे होते होंगे घर पर पड़ गए हैं तो वो ढूंढते होंगे कि यार कोई आया ऐसा, कई तो ऐसे होते हैं सर भाई कि जब वो बीमार होते हैं तो घर वालों को पता चलता है कि इसके ताल्लुकात कितने, वो आना जाना लगा ही रहे, मतलब जब पता चले घर वालों अच्छा भाई इतने जान पहचान वाले हैं। दुनिया है ना असद भाई, जिंदगी तो सच्ची बात है, जिंदगी का लुत्फ लेना होना तो ये इस्लाम के जो तरीके हैं ना, यकीन माने जिंदगी के मज़े आ जाते, मज़ा आ जाता। और अगर ये नहीं हो तो फिर ठीक है, आप पैसा कमा लेंगे, आप घर बना लेंगे, आपकी फैक्ट्रियाँ होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो जो एक लुत्फ है ना उसकी बात ही अलग। और जिंदगी आपके साथ वैसा ही बिहेव करती है, एक इंग्लिश का जुमला भी है, यू टीच पीपल हाउ दे शुड बिहेव विद यू, आप लोगों को सिखाते हैं कि वो आपके साथ कैसे पेश आए। तो अब आप सिखाते हैं का मतलब ये है कि आप अपने अंदाज से अपने ताल्लुकात से बताते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है,
मेरी इज्जत करो।
हाँ जी,
मेरी इज्जत करो,
जब आप इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा, अगर आप मिसबिहेव करोगे तो समझो आप उसको सिखा रहे हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, तो फिर आपको वही मिलेगा। अब मैं उस शोबे का नाम नहीं लेता, हो सकता है उस शोबे से वाबस्ता कुछ अफराद हो, एक डिपार्टमेंट है अमूमन उससे वाबस्ता अफराद जवानी में किसी की परवाह नहीं करते, और शोहरत भी होती है उसमें, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। तभी पिछले दिनों एक खबर आई कि उस शोबे से वाबस्ता किसी का इंतकाल हुआ, और 6 दिन या पता नहीं 7 दिन के बाद जो है वो जब बदबू महसूस हुई तो फ्लैट में से लाश जो है वो जैसी भी हालत में मिली होगी। तो अफसोस हुआ, ज़ाहिर है वो जो भी मुसलमान ही मुसलमान का ही मामला था, तो बहरहाल। लेकिन उसके पीछे एक बात है ना कि जब आपके पास पैसा है शोहरत है जैसे भी आप फरमा, तो आप अकेले आगे बढ़ते रहे, आपने किसी की परवाह नहीं की, किसी को वक्त नहीं दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, आपने कहा भाई मैं हूँ ना मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँ ज़िंदगी गुजारूँ। तो फिर जब आप बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं तो फिर वो आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो दाएं बाएं फिर कुछ भी नहीं होता। तो फिर बाज़ औक़ात इस तरह के फिर भी ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, इस्लामी माशरे में इसको कोई भी पसंदीदा करार नहीं देगा, लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो है ना।
और खाली ज़रूरत देखें, ज़रूरत तो दुनिया जीते जी नहीं मरने के बाद भी पड़ती, चले सवाल तो चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा। अब हमने किसी से यूँ रखा होगा, किसी के साथ ताल्लुक रखा होगा तो कोई हमें भी सारे सवाब करेगा। और यहाँ तो एक बार सीखने की बात मैं अर्ज़ करूँगा, जो हमने बड़ों से सीखा है, कैसे भाई हमने अपने बड़ों में देखा था इंतकाल हो जाए तो फातिहा का निज़ाम, अच्छा फिर वो ये जो स्वयं دسواں جمعرات کو فاتحہ، 45واں وہ گیدرنگ ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ جو سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک خاندان یا اپنا جو تعلق ہے ان سب چیزوں کو، یہ اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یار یہ کیسا ہمارا ایک تعلق ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، یہ مرنے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو، پھر اس کے فوائد کیا؟ وہ روایتیں جو ہیں کہ بندہ گناہوں سمیت جو ہے وہ داخل ہوگا قبر میں، لیکن جب قبر سے نکالا جائے گا تو وہ صاف ہوگا، کیونکہ وہ مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورت بات ہے، تو انشاءاللہ یہ جو تعلق قائم ہوتا ہے نا، اور یہاں یہ ضرور ہوگا اچھوں سے تعلق
جی،
تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ دے گا۔
بے شک بے شک، اللہ پاک سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، اس وقت ہم جس روڈ سے گزر رہے ہیں، کارساز کا یہ روڈ کہلاتا ہے، اور پاکستان نیوی کے کچھ رہائشی علاقے ہیں، کچھ ان کے اور ایریاز ہیں، تو کافی مشہور روڈ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ فیضان مدینہ پہنچے گے، نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہے، اور اس سفر کے دوران ہم نے کوشش کی کہ کچھ جنرل ڈسکشن بھی رہے، سیکھنے کے بیچ میں جو چیزیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پر ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے۔